ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। श्रीमद्भागवतम पांचवा स्कंद अध्याय 18 श्लोक संख्या 13। कृपया मेरे पीछे पीछे दोहराइए। हरि हि साक्षात् भगवान् शरीरिणाम् आत्मा जशानाम् इव तोयमीप्सितम् हित्वा महांस्तं यदि सज्जते गृहे तदा महत्वं वयसा दंपतीनां। शब्दशः अनुवाद भाषांतर और तात्पर्य। इस डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की। हरि ही भगवान, ही निश्चय ही साक्षात प्रत्यक्ष रूप में भगवान, भगवान शरीरिणाम समस्त देहधारियों की, आत्मा, आत्मा जशानाम जलचरों के, इव सदृश तोयम जल, इप्सितम कामना की जाती है, हित्वा त्याग कर, महान, महान व्यक्ति तम उसको, यदि सज्जते लिप्त हो जाता है ग्रहे गृहस्थ जीवन में, तदा उस समय महत्वम बड़ापन वयसा आयु से दंपति नाम पति पत्नी का, जिस प्रकार जलचर प्राणी सदैव विशाल जलराशि में रहना चाहते हैं उसी प्रकार समस्त बद्धात्माएं श्री भगवान के अपार अस्तित्व में रहने की कामना करती है। अतः यदि भौतिक गणना के आधार पर माना गया कि कोई श्रेष्ठ पुरुष किन्हीं कारणों से परमात्मा की शरण न ग्रहण कर ग्रस्त जीवन में लिप्त हो जाता है तो उसकी श्रेष्ठता निम्न श्रेणी के तरुण दंपत्ति जैसी होती है। भौतिक जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्ति से समस्त आध्यात्मिक गुणों का लोप हो जाता है। यद्यपि तात्पर्य, यद्यपि मकर अत्यंत भयावना पशु है किंतु जल के बाहर आने पर वह अशक्त हो जाता है। जल के बाहर आने पर वह अपनी मूल शक्ति नहीं दिखा सकता। इस प्रकार सर्वव्यापी परमात्मा समस्त प्राणियों का स्रोत है और सभी प्राणी उनके विभिन्न अंश हैं। जब प्राणी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव के संपर्क में रहता है तो वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति को उसी प्रकार प्रकट करता है जिस प्रकार जल में मकर अपनी शक्ति प्रदर्शित करता है। तात्पर्य यह है कि जब जीवात्मा आध्यात्मिक जगत में रहता है और आध्यात्मिक कार्यों में संलग्न रहता है तभी उसकी महानता के दर्शन होते हैं। अनेक ग्रस्त वेदों में पारंगत होते हुए भी ग्रस्त जीवन में लिप्त रहते हैं, उनकी तुलना यहाँ जल के बाहर आए हुए मकर से की जाती है क्योंकि वे समस्त आध्यात्मिक शक्ति से विहीन होते हैं। उनकी स्थिति उस तरुण पति पत्नी युग्म से की जाती है जो अशिक्षित होते हुए भी पारस्परिक अस्थाई सुंदरता के प्रति आकृष्ट होकर परस्पर प्रशंसा करते रहते हैं। इस प्रकार की महानता निम्न श्रेणी के व्यक्तियों द्वारा सराही जाती। अतः प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह परमात्मा की शरण में जाए, जो समस्त जीवात्माओं का मूल स्रोत है। किसी भी व्यक्ति को तथाकथित भौतिकवादी ग्रस्त जीवन के सुख में वृथा समय नहीं गंवाना चाहिए। वैदिक सभ्यता में 50 वर्ष की आयु तक ही इस प्रकार पंगु जीवन बिताने की अनुमति दी जाती। फिर तो गृहस्थ जीवन त्याग कर वानप्रस्थ अथवा संन्यास आश्रम में प्रवेश करना पड़ता है, जिसमें वह भगवान का पूर्णाश्रय ग्रहण करता है। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमय श्री गुरवे श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयहं ददाति स्वपदांतिकं वंदेहं श्री गुरु श्रीयुता पदकमलं श्री गुरुन वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमाम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा में हार्दिक स्वागत करते हैं हम। तो हमारी बोलने की कुछ पात्रता है नहीं, तभी भी मैं सभी से निवेदन चाहता हूँ, विशेषतः सभी वरिष्ठों से आशीर्वाद चाहता हूँ, ताकि मैं ये जो बहुत गंभीर विषय है और महत्वपूर्ण विषय में उसके बारे में मैं जो कुछ बयान कर पाऊँ। तो जो अभी का जो विषय चल रहा है कि जम्बूद्वीप के निवासियों द्वारा भगवान की स्तुति, तो इनफैक्ट ये जो सब विषय है बहुत गहरा है, इसको वैदिक कॉस्मोलॉजी बोलते हैं, मतलब हिंदी भाषा में हम बोलेंगे कि ब्रह्मांड दर्शन। ब्रह्मांड का जो अभ्यास बहुत ही गहराई से श्रीमद् भागवतम में दिया गया है, तो हमारा बहुत ही सौभाग्य है कि श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमें ये ब्रह्मांड का अभ्यास करने को मिल रहा है। तो इसके लिए ये प्रथम ये पांचवें स्कंद में जो अभी जो ये विषय चल रहा है, तो इसका जो हमने पूरा समराइज करके एक पीपीटी बनाया है, जो आपको आई होप आपको ये दिख रहा है इधर। तो ये जो वैदिक कॉस्मोलॉजी का जो मॉडल है, तो उसका एक पीपीटी में रूपांतरण किया गया है कि यदि वैदिक कॉस्मोलॉजी का ब्रह्मांड दर्शन का यदि मॉडल किया जाए तो तो ऐसा दिखेगा। तो ये जो पीपीटी है ये बनाने को हमारे पुणे के भक्तों के टीम ने बनाया है, तो उनको लगभग 20 दिन लगे ये जो मॉडल यहाँ पे दिख रहा है वो बनाने के लिए। तो आज का हमारा विषय भी वही है, तो इसके लिए मैं सर्वप्रथम संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा कि वैदिक कॉस्मोलॉजी क्या है, ये ब्रह्मांड दर्शन क्या है और क्यों इसका हमने चर्चा करना चाहिए। तो सर्वप्रथम इसका हमने चर्चा करना चाहिए और अभ्यास करना चाहिए क्योंकि ये सुखदेव गोस्वामी की इच्छा है, और ये सुखदेव गोस्वामी ने इसीलिए श्रीमद् भागवतम में उसको प्रतिपादित किया है, और ये शिल प्रभुपाद की भी इच्छा है कि आने वाले जो भक्त है हरे कृष्ण संस्था में उनको ये जो ब्रह्मांड दर्शन वैदिक कॉस्मोलॉजी जो कि श्रीमद् भागवतम में दी गई है तो उसका वो अच्छे से अभ्यास करें और लोगों में जो ब्रह्मांड के विषय में बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं वो गलत फहमियाँ दूर हो जाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जिस जगह रह रहे हैं तो वो जगह क्या है, वो कैसे बनी हुई है, तो ये जानना बहुत बहुत यानी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए कुछ भक्तों ने निश्चय किया कि ये ब्रह्मांड दर्शन का अच्छा अभ्यास हो जाए, तो ये अभ्यास के बाद उन्होंने ये मॉडल बनाया, और ये मॉडल कई बड़े बड़े कंपनियों ने मतलब बड़े बड़े जो लोगों ने इनकी सराहना की जैसे नेशनल ज्योग्राफी डिस्कवरी, तो इन्होंने भी इस मॉडल की सराहना की, ये बहुत सुंदर मॉडल है। तो इसके लिए सबसे पहले ब्रह्मांड दर्शन का अभ्यास क्यों करें हम, तो श्रीमद् भागवतम के 10 विषय हैं, अत्र सर्गो विसर्गो स्थानम पोषण उदय मनवंतर ईशानुकथा निरोधो मुक्तिर आश्रय। तो इसमें से ये जो विषय है पांचवा स्कंद का ये जो विषय है जो आज हमारे सामने प्रस्तुत है तो है स्थानम। स्थानम ये विषय है, स्थानम मतलब क्या, स्थिति वैकुंठ विजय, मतलब ऐसा जो स्थान जिससे आप वैकुंठ के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं वो स्थान का वर्णन मतलब स्थानम। तो इसीलिए हम जिस जगह रह रहे हैं वो क्या है, वो कैसी बनी है, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए श्रील प्रभुपाद अक्सर कई बार अपने प्रवचनों में बोलते हैं कि कृष्ण को जानना यानी कृष्ण की शक्तियों को जानना। तो ये जो ब्रह्मांड है जो भगवान ने हमारे लिए बनाया है, देखिए हम भगवान से ईर्ष्या करके यहाँ पे आए हैं तभी भी भगवान ने हमारे लिए इतना सुंदर ब्रह्मांड बनाया है, तो ये उस ब्रह्मांड का अभ्यास है। तो ब्रह्म संहिता में भी बोला गया है, एकोपि असौ रचयितुं जगदंड कोटि यक्षक्तिरस्ति जगदंड चया तदंत अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान ने ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड की रचना की है, ये जो हमें दिख रहा है ये अनगिनत ब्रह्मांडों में से एक है। तो भगवान श्री कृष्ण इस ब्रह्मांड में है, हर ब्रह्मांड में वो गर्भोदक्ष विष्णु बन के वो ब्रह्मांड को बनाए रखते हैं, और ब्रह्मांड में नहीं है परमाणु में भी रहते हैं, तो ये भगवान की महानता है। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि हमें इस ब्रह्मांड का अभ्यास करना है तो कुछ प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, सब प्रयोग हो चुका है। प्रभुपाद बोलते हैं आप क्या खाक आपने ये छोटे से दिमाग से प्रयोग करोगे, आप कुछ नहीं जान सकते, ये जो आपका आपकी इंद्रिय अपूर्ण है, तो जो कुछ आप ब्रह्मांड का अभ्यास इस अपूर्ण इंद्रिय द्वारा करेंगे वो अपूर्ण ही रहेगा। तो साइंटिस्ट बोलेंगे तो हम बड़ी बड़ी जो दूरबीनें रखते हैं, बड़े बड़े क्या बोलते हैं दूरबीन को, टेलीस्कोप, पर वो भी अपूर्ण इंद्रियों से बना हुआ है, और उससे जो कुछ अभ्यास होगा वो भी अपूर्ण होगा, और जो लोगों के सामने निष्कर्ष आएगा वो भी अपूर्ण रहेगा, तो सब ज्ञान अपूर्ण है। तो प्रभुपाद बोले कि इस तरह इस अपूर्ण बुद्धि द्वारा आप इस पूर्ण का अभ्यास मत करो, श्रीमद् भागवतम में सब सब कुछ दे चुका है, दे चुके हैं सुखदेव गोस्वामी, उसका केवल आप अभ्यास करो तो आपका समय भी बचेगा और आपको एक सही ज्ञान मिलेगा, इस तरह से श्रील प्रभुपाद बोलते हैं। तो इसके लिए ये अनेक अनेक पाश्चात्य जगत के कॉस्मोलॉजिस्ट है या एस्ट्रोलॉजिस्ट है या बड़े बड़े विचारवंत, इन्होंने क्या किया है, ये जो भागवतम में हमें दिखाई दे रहा है ब्रह्मांड दर्शन, उसकी सराहना की है। तो काउंट मॉरिस मैटेनलिंक ये एक बहुत बड़ा लेखक है, कई सारे तत्वज्ञानों के ऊपर उन्होंने किताबें लिखी है। तो 1911 में उसको नोबेल अवार्ड भी मिला था। तो ऐसा शास्त्रज्ञ बोलता है यदि आपको ब्रह्मांड के बारे में कुछ यदि सीखना है तो कहां से सीखो, हिंदू लोगों की मतलब सनातन धर्म में जो जानकारी दी है वो जानकारी के सामने ये पाश्चात्य जगत की ब्रह्मांड की जानकारी एक खटमल की तरह है। मतलब इसको यदि पूरा सर कहा जाए तो पाश्चात्य जगत का जो ब्रह्मांड का स्टडी है उसको एक बाल की तरह समझा जाएगा। तो ब्रह्मचारी का सर नहीं, नॉर्मल सिर, इसके ऊपर जितने बाल होते हैं उसको कंपेयर किया गया है श्रीमद् भागवतम में दी गई ब्रह्मांड दर्शन को। और पाश्चात्य जगत में जो कुछ ब्रह्मांड का अभ्यास होता है उसकी तुलना एक बाल की तरह की गई है। तो कहां एक पूरा सर बालों से बना हुआ और कहां पे एक बाल। तो इस तरह से अनेक अनेक महान साइंटिस्ट, स्टीफन हॉकिंस, आइंस्टाइन, ये सराहना करते हैं कि श्रीमद् भागवतम में जो कोई कॉस्मोलॉजी दी है, जो कुछ ब्रह्मांड दर्शन दिया गया है वो बहुत ही श्रेष्ठ है। तो कार्ल सैगन करके भी एक बहुत बड़ा एस्ट्रोनॉमर है, जो अंतराल वीर बोलते हैं हम उसको, अंतराल में जाके अलग अलग रिसर्च करते हैं। तो बोलते कि मेरे इतने सारे वर्षों के जो खगोल शास्त्र के बारे में जितना मैंने अभ्यास किया उसके बाद मुझे पता चला कि जो कुछ ये सनातन धर्म में दिया है वो बहुत महान है, उसके सामने ये जो ज्ञान कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यदि हमें कुछ सीखना है ब्रह्मांड के बारे में तो श्रीमद् भागवतम से सीखना चाहिए। और ये जो आपके सामने जो प्रस्तुत जो मॉडल है जो आपको दिख रहा है वो श्रीमद् भागवतम के पांचवें स्कंद में जितना कॉस्मोलॉजी दिया है, जिसमें आज का भी विषय की जम्बूद्वीप के नियवासियों के द्वारा भगवान की स्तुति, वो सब इसका उसमें सारांश दिया है। तो यहां पे अभी श्रील प्रभुपाद का भागवतम में कई जगह प्रतिपादन है कि हमने क्यों ब्रह्मांड दर्शन सीखना चाहिए। प्रभुपाद बोलते हैं कि वैष्णव मतलब ये नहीं केवल भावुक लोग हैं। तो लोगों को लगता है कि वैष्णव केवल एक भावुकता से भगवान के सामने नाचते हैं, सुबह सुबह 4 बजे उठ के नाचते हैं पागल की तरह, रास्ते पे भी नाचते हैं, ये एक भावुक लोग हैं। पर प्रभुपाद बोलते हैं नहीं, ये सारे जो लोग हैं बहुत शास्त्रों में भी गंभीर रहते। तो इसके लिए प्रभुपाद बोलते हैं इसके लिए हमें दुनिया को बता देना चाहिए कि सच्चा कॉस्मोलॉजी क्या है, एक सच्चा ब्रह्मांड दर्शन क्या है, सही ब्रह्मांड दर्शन क्या है, और उनका जो कुछ ब्रह्मांड का अभ्यास है उसमें कितनी खोट है, ये उनको हमने दिखा देना चाहिए। तो क्योंकि ऐसा क्यों है, क्यों श्रीमद् भागवतम का जो ब्रह्मांड दर्शन है वो क्यों इतना महान बोला गया है, क्योंकि उसमें सबसे महत्वपूर्ण तत्वों की चर्चा की गई है, वह आत्मा तत्व और परमात्मा तत्व। बाकी सारे जो लोग हैं, बाकी सारे जो पाश्चात्य जगत का जो कोई ब्रह्मांड दर्शन होता है तो केवल भौतिकता की आधार पे वह हो, और जैसे कि वो देखते हम सूरज तो बोलते हैं कि सूरज केवल एक आग का गोला है। तो पर हमारा क्या तत्व ज्ञान है, सूरज केवल आग का गोला है क्या? नहीं, उसके बीच एक भगवान है, वो भगवान का वो आंख है और अंदर एक वो देवता बैठी है, वो शक्ति बहुत शक्तिशाली है, उनको शक्त्यावेश अवतार बोलते हैं। सूरज जो है भगवान का शक्त्यावेश अवतार है। तो यक्षुरे से सविता सकल ग्रहणम राजा सुरमूर्ति राशेष तेजा यस्याद्नया संभ्रमति कालचक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ये हमारा तत्वज्ञान है। सारा ब्रह्मांड का जो व्यवस्थापन होता है वो कोई व्यक्ति करते हैं। तो पाश्चात्य देश में जो ब्रह्मांड दर्शन है तो उनके मुताबिक कौन सब देखता है वो सब अपने आप होता है। तो भगवान भगवद गीता में इसका ही आलोचना की गई है। असत्यम अप्रतिष्ठम थे जगदाहुरनिश्वरम परस्पर संबोधम किमन्यत काम काम हेतुकम। बोलते हैं कि ये सारा जगत अपने आप बना है और इस जगत का केवल एक ही मकसद है, इंद्रिय की तृप्ति करना। तो भगवद गीता में बताया गया है कि ये ऐसे लोग असत्य बोला गया है, अप्रतिष्ठित बोला गया है। वो क्या बोलते हैं, ये विश्व ऐसे ही बना हुआ है। तो उनका क्या मानना है कि वो बोलते हैं कि कई सालों पहले एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और इस विस्फोट से ये सारा ब्रह्मांड पैदा हुआ। अभी एक छोटा बच्चा भी बताएगा कि कोई मैं एक बिल्डिंग में जाके विस्फोट करूंगा तो और एक बिल्डिंग खड़ी होगी क्या, जो है वो भी गिर जाएगी। तो ठीक है, चलो मानो विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के बाद दूसरा प्रश्न क्या उद्भव होता है, वो विस्फोट किया किसने? जैसे कि बड़े बड़े आतंकवादी विस्फोट करते हैं, क्या वो अपने आप होता है क्या? सबसे प्रथम पुलिस फिर क्या करती है, ये विस्फोट किया किसने? तो जितना बड़ा विस्फोट उतना बड़ा वो विस्फोटकारी शक्तिशाली रहता है। तो इसके लिए चलो मानो उनका मानते हैं हम, तो पहले सर्वप्रथम विस्फोट किसने किया? तो इसके लिए उनका ज्ञान तर्क के ऊपर आधारित है और श्रीमद् भागवतम में उसकी भी आलोचना की है। तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नासावस्य मुद्रि मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्व नीतम गुहाया महाजनो ये न गतस्तपन्ता। तो बोले कि आप तर्क वितर्क का मत करो ज्यादा, ये जो भगवान का ज्ञान है वो पहले से सब बना हुआ है, आप केवल उसे ग्रहण करो, केवल महाजनों का आप अनुसरण करो, इस तरह से आपको पूरी तरह से ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो इसके लिए श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि ब्रह्मांड दर्शन का हमें अभ्यास करना चाहिए और बाकी लोगों को भी इसके बारे में बताना चाहिए। तो और क्यों बताना चाहिए, ताकि लोगों का भगवान के प्रति सराहना बढ़ेगा। जब हम सोचेंगे कि भगवान ने कितनी सुंदरता से ये हमारे लिए विश्व बनाया है, कितना परफेक्टली व्यवस्थापन है, ये जब हम जानेंगे तो भगवान के प्रति और हमारी सराहना बढ़ेगी। इसीलिए ब्रह्मांड का अभ्यास होना चाहिए। तो और प्रभुपाद बोले कि ये सारे जगत में ब्रह्मांड के विषय में बहुत गलत धारणाएं हैं, तो इसके लिए वो धारणा दूर करने के लिए हमने जो ब्रह्मांड दर्शन का अभ्यास करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि सत्स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाराज को श्रील प्रभुपाद 1976 में पत्र लिखे कि सत्स्वरूप दास महाराज को, स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाराज को बोले कि आप सारे अभी इकट्ठा आ जाओ, जो सारे जो लोग हैं आप वरिष्ठ सन्यासी, और इकट्ठा आके एक अच्छे से इसका अभ्यास करो, वैदिक जो पांचवें स्कंद के ब्रह्मांड का, और उसका मॉडल बनाओ आप, और उसमें सब होना चाहिए, सूरज कैसे घूमता है, चंद्र कैसे घूमता है, नरक लोक उसमें होना चाहिए और सप्तर्षि होना चाहिए, जनलोक तपरलोक महरलोक, जिस ये हम ये जो देख रहे हैं मॉडल, तो वो सब होना चाहिए। तो प्रभुपाद बोले उसमें गंगा कैसे अवतरित होती है ये भी सब उसमें होना चाहिए, ऐसा श्रील प्रभुपाद बताते हैं। तो मतलब ये जो कुछ हो रहा है प्रभुपाद की इच्छा है कि ऐसा होना चाहिए। तो फिर हमारा भी इसके लिए, प्रभुपाद बोलते कि इसके लिए लोग बहुत ही उत्सुक हो गए, श्रीमद् भागवतम के लिए लोगों में उत्सुकता बढ़ेगी। ये जो श्रीमद् भागवतम का ये जो ब्रह्मांड है, तो यदि इसका अच्छे से अभ्यास हो जाए और इसका मॉडल यदि खड़ा किया जाए तो सारे लोगों में बहुत ही उत्सुकता रहेगी और उनको लगेगा कि मुझे श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए, खरीदी करना चाहिए, और करके वैसे ही रखना नहीं चाहिए पर उसमें उसका रोज अभ्यास भी करना चाहिए। तो ये प्रभुपाद की इच्छा थी। तो इसका हमें भी बहुत साक्षात्कार है। तो जन्माष्टमी में हम अलग अलग डेकोरेशन करते हैं, हमारे छोटा सा मंदिर है पुणे में, तो उसमें एक दो साल पहले हमने ये कॉस्मोलॉजी किया। कॉस्मोलॉजी का इतना अच्छा मॉडल नहीं कर पाए हम, पर इसमें से जो कुछ दिखाया है उसमें से 20-30% हमने उसमें दिखा पाए। तो जैसे वो कॉस्मोलॉजी मॉडल था दो साल पहले, तो बहुत सारे लोग आके पूछने लग गए ये क्या है ये क्या है। तो लोगों में इंक्विजिटिवनेस बढ़ गया, उनमें क्या बढ़ गई, लोगों में जिज्ञासा बढ़ गई, और बहुत सारे लोगों ने इच्छा दिखाई कि हम ये जानना चाहते हैं, श्रीमद् भागवतम हम खरीदी करना चाहते हैं। और पिछले साल हमने फिर भगवान की लीलाएं रखी थी स्टेज के ऊपर, गोचारण लीला और ब्रह्म विमोहन लीला। तो वो क्या बन गया था, वो केवल सेल्फी पॉइंट बन गया। फिर सब लोग आके क्या करते रहे थे, उसके ऊपर सेल्फी निकाल रहे थे और पूछ रहे नहीं रहे थे कि ये क्या है, ये कौन सी लीला है। जब कॉस्मोलॉजी रखा तो बहुत लोगों में जिज्ञासा बढ़ गई, पर जब भगवान की लीलाएं रखी तो क्या हुआ, सिर्फ वो सेल्फी निकाल के चले गए। तो इसे हमें समझ में आता है कि यहाँ पे हम भगवान की लीला को नीचा नहीं दिखा रहे, किंतु यदि श्रीमद् भागवतम के जैसे प्रथम स्कंद से 10वें स्कंद तक हम जाते हैं, पहले प्रथम 9 का अच्छा अध्ययन होने के बाद 10वें में जाते हैं, तो उसी तरह से प्रभुपाद बोले कि इसमें से लोगों को इंक्विजिटिवनेस बढ़ेगा, जिज्ञासा बढ़ेगी, और तब जाके वो 10वां स्कंद की सराहना कर पाएंगे। तो 10वां स्कंद ये कोई मामूली चीज नहीं है। तो प्रभुपाद बोले पर इस तरह से यदि हम उनकी लोगों की जिज्ञासा बढ़ाएंगे और उस तरह से जब हमारे पास वो आएंगे हम उनको ज्ञान देंगे, तब जाके वो 10वां स्कंद वो अप्रिशिएट कर पाएंगे, उसकी वो सराहना कर पाएंगे। तो इस तरह से प्रभुपाद ने खत में लिखा कि इस तरह से आपने वैदिक जो ब्रह्मांड दर्शन उसका आपने मॉडल जो उसका प्रतिकृति आपने बनाना चाहिए, इस तरह से लोगों के लिए वो बहुत फायदेमंद रहेगा। तो इसके लिए अभी ये तो बहुत गहरा विषय है और हमारा भी इसके ऊपर ज्यादा अभ्यास नहीं है, पर जितना कुछ हमने श्रीमद् भागवतम में पढ़ा है, जितना कुछ वरिष्ठों के प्रवचनों में पढ़ा है, उतना हम बयान करेंगे। तो ये हम आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ब्रह्मांड का ये चालू होता है नीचे से। तो ब्रह्मांड बना है 14 भुवनों से, जो भगवान के गर्भ में से जो ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। तो ब्रह्मा जी की जो कमल की जो डंडी है उसमें 14 भुवन स्थित रहते हैं, और फिर सबसे नीचे आप देख रहे हैं कि चतुष्कुमारों को वहां पे शंकरषण भगवान उनको ज्ञान देते हैं अनंत शेष के ऊपर। फिर उसके बाद बिलस स्वर्ग, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ पे दिख पा रहा है, ये जो माउस आपको दिख रहा है तो ये क्या है, इसको बोलते हैं बिलस स्वर्ग। तो ये पूरा 14 में से ये 7 नीचे प्लैनेटरी सिस्टम से, अतल वितल सुतल रसातल तलातल पातल। तो ये बिलस स्वर्ग क्या है, जो असुरी लोगों को, असुरी जो लोग हैं किंतु वो बहुत ही ऐश्वर्यशाली है, तो उनके यो जो ये बिलस स्वर्ग प्लैनेटरी सिस्टम, बिलस स्वर्ग लोग। तो ये जो बिलस स्वर्ग लोग है वो क्या है, बिल क्यों बोला गया है, जो बिल रहते हैं ना सांप के, तो उस तरह से ही वो अंदर है थोड़े। तो कभी कभी हम देखते हैं कि बहुत सारे डकैत रहते हैं, उनको क्या बोला जाता है, अंडरग्राउंड। वो आम तरह से ऊपर खुलेआम नहीं घूमते, घूमेंगे तो क्या होगा, पुलिस उनको पकड़ लेगी। तो क्या है, रहते वो थोड़ा अंडरग्राउंड रहते हो, अंडरवर्ल्ड, इसके लिए क्या वो शब्द है उसके लिए, अंडर, जो मुंबई से है उनको ये शब्द वाकिफ होगा, अंडरवर्ल्ड। अंडरवर्ल्ड मतलब क्या है, जो डकैते का लोग रहता है वो, और इस लोगों में सूरज नहीं पहुंचता इस लोगों तक। तो इन लोगों में जो अंदर जो सर्प रहते हैं और अलग अलग रत्न, सर्प के सिर पे रत्न रहते हैं और अलग अलग दीवारों पे अलग अलग रत्न लगाए रहते, वो रत्न से प्रकाशित होता है बिल स्वर्ग लोक। और फिर हम और ये जो बिल स्वर्ग है यो जो इंद्र के स्वर्ग से कई गुना ऐश्वर्यशाली है। तो ऐसा कैसे? क्योंकि जो डकैत लोग रहते हैं उनको ज्यादा भोग करना रहता है जीवन में। यदि मानो दाऊद इब्राहिम और नरेंद्र मोदी, ये दोनों में से किनका बंगला ज्यादा ऐश्वर्यशाली रहेगा? दाऊद इब्राहिम का रहेगा। नरेंद्र मोदी बेचारे सादे सरल, वो सुबह योगा करते हैं और ज्यादा बहुत सरल जीवन रहता है। तो इसी तरह से देवी देवताओं से भी असुर लोगों की इंद्र तृप्ति की कामना इतनी रहती है, तो इसके लिए वो बिल स्वर्ग है उसमें ऐश्वर्य बहुत रहता है, बहुत ऐश्वर्य रहता है वो, और भगवान की योजना से बहुत ऐश्वर्य रहता है। यदि कम ऐश्वर्य दिया जाए तो क्या करेंगे वो? तुरंत अटैक करेंगे वो कि वहाँ और ऐश्वर्य चाहिए। इसके लिए भगवान की योजना से उनको ज़्यादा ऐश्वर्य दिया जाता है और उनकी इंद्रिय तृप्ति की कामनाएं बहुत ज़्यादा रहती है, इसके लिए वो उनका वो स्वर्ग लोग ज़्यादा ऐश्वर्यशाली रहता है। तो उसके ऊपर है हम, और उसके ठीक बाजू में यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या है, नरक लोक। जो नरक लोक जो है उस उधर 28 नरक लोक है। हर तरह की जो पाप कार्य है उसके लिए एक अलग तरह का नरक बनाया गया है स्पेशल। जितना गहरा पाप उतना गहरा वो नरक उसके लिए बनाया गया है। तो उसके ऊपर है पितृलोक, मतलब जो पितृ जो है जो कोई गुजरते हैं वो पितृलोक उधर रहते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सब जो हमारे सामने प्रस्तुतिकरण हो रहा है वो परीक्षित महाराज ने सवाल पूछा इनको, सुखदेव गोस्वामी को। तो परीक्षित महाराज ने आने वाली सारी पीढ़ियों के लिए प्रश्न पूछे, इसके लिए हम जो सुखदेव गोस्वामी ने ब्रह्मांड का अभ्यास परीक्षित महाराज के सामने प्रस्तुत किया। उसी तरह से ये जो नरक के लोगों का वर्णन सुन के परीक्षित महाराज बहुत डर गए, और डरने के बाद वो बोले कि अभी ये सारे जीवात्मा का क्या होगा, ये तो सब नरक में जाएंगे और इतनी यातना भोगेंगे, तो इसके लिए अभी क्या किया जाए? तो इसके लिए सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम है, केवल हरि के नाम से इस तरह से वो नरक यातनाओं से बचे जाते। तो इसके लिए हम देखते हैं कि परीक्षित महाराज में कितनी अनुकंपा है, आने वाले पीढ़ियों के लिए वो ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। तो इसके लिए परीक्षित महाराज के कई सवालों का सुखदेव गोस्वामी ने सराहना की, बोले वरी आने शते प्रश्न कृतो लोकम हेतो नृप आत्मविद सम्मता पुंसम श्रोतव्याधीशियो पर। बोलते कि आपके प्रश्न बहुत ही सुंदर है। क्यों सुंदर है? क्योंकि आने वाले सारे पीढ़ी का वो भला करेंगे। तो इसके लिए जब चर्चा चल रही थी तब सुखदेव गोस्वामी को लगा कि परीक्षित महाराज को भूख प्यास लगी होगी, क्या मैं कथा बंद करूं क्या? तब और बाकी सारे मुनियों को भी लगी होगी भूख, किंतु परीक्षित महाराज बोले नहीं, आप कथा जारी रखो। तो परीक्षित महाराज बोले नैसाम अति दुस्सहक सुनमाम त्यक्तोदम अपि बाधते पीबन तंत्र रसामोदम च्युतम हरि कथामृतम, कि मैं सारी प्यास और भूख भूल गया हूं क्योंकि आपके मुख से जो कथा का अमृत बह रहा है उसकी वजह से मैं सारा मेरे भूख और प्यास मैं भूल चुका हूं। तो इस तरह से इसमें परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं जो नरक के वर्णन के बाद। तो ये नरक का वर्णन है, तो नरक का वर्णन हम श्रीमद् भागवत में वो देखेंगे, वो इतना ये है, भयावह है, तो वो सुन के ही हमारे रोंगटे खड़े होते हैं। तो वहां पे जाए तो क्या फिर उसका? तो इसके लिए हमें भी नरक में जाने से बचना है और बाकी को भी बचाना, इसके लिए प्रचार कार्य बहुत जरूरी है। तो श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम इस जगह पे जाने से बच गए। तो इसके लिए फिर उसके ऊपर जो ये आप देख रहे हैं तो ये है भूलोक या भूमंडल जिसको बोलते हैं। तो भूलोक क्या है जिस पे अभी हम रह रहे हैं? तो ये सबसे बीच वाला प्लैनेटरी सिस्टम है, और भगवत धाम जाना है तो इसी पे आना पड़ेगा, स्वर्ग से भी नहीं जा सकते, जाएंगे तो बहुत मुश्किल है, और नीचे के लोगों से भी नहीं जा सकते। जैसे कि कोई एक बिल्डिंग है तो 7 माले ऊपर है और 7 माले नीचे है, और मुझे दूर जाके फ्लाइट पकड़नी है, तो मैं सबसे ऊपर के माले पे हूं तो कैसे मैं फ्लाइट पकड़ूंगा, तो उधर से मैं कूदी मारूंगा क्या फ्लाइट के ऊपर? नहीं, मुझे कहां आना पड़ेगा? बीच आना पड़ेगा। और मैं सबसे नीचे हूं तभी भी मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे मिडल पे आना पड़ेगा, तब जाके मैं फ्लाइट पकड़ सकता हूं। इसके लिए यदि भगवत धाम जाना है तो यही जगह है जहां से हम जा सकते हैं। तो ये जो है भूमंडल है, तो भूमंडल का भी बहुत गहरा चर्चा है, उसका भी एक अलग प्रेजेंटेशन है। तो उसके ऊपर यक्ष राक्षस रहते हैं, इधर आप देखेंगे, और ये जो भूमंडल के बीचों बीच सुमेरु पर्वत है, तो सुमेरु पर्वत जो है, और भूमंडल पे सप्तद्वीप है, सप्तद्वीप के बीचों बीच जम्बूद्वीप है, और जम्बूद्वीप में 9 वर्ष है, 9 वर्ष में से हमारा एक भारत वर्ष है। तो ये रहा भूमंडल, और उसके ऊपर आप देख रहे हैं राहु जो अभी उसके ऊपर के जो प्लैनेट है, अभी तक का जो वर्णन है वो स्थिर है, वो सब प्लैनेटरी सिस्टम है वो स्थिर है। तो पाश्चात्य ब्रह्मांड दर्शन के अनुरूप बहुत बड़ी एक भ्रांत धारणा है कि पृथ्वी सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, परंतु वैदिक के अनुसार सूरज पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है, और ये बहुत सारे साइंटिस्ट ने भी इसका प्रतिपादन किया है। तो इसके लिए जो सुमेरु जो पर्वत है उसके इर्द गिर्द आप अभी यहां देख रहे हैं, ये सारे घूमने वाले जो हैं, अभी भूवर लोक इसको बोलते हैं, जिसमें सूर्य है और राहु है, ये सारे जो सुमेरु के इर्द गिर्द घूमते हैं, और उसके ठीक ऊपर यहां पे आप देख रहे चंद्र, चंद्र और सूर्य सुमेरु के इर्द गिर्द ऐसा घूमते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं सुमेरु की रोज। तो उसमें से जो सूर्य है, तो सूर्य के अंदर जो है इवम विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम, जो विवस्वान जो है, तो उस सूरज के अंदर क्या वो जो देवता है, और उसका अंदर रथ है, और रथ का एक पहिया है जो कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ठीक जैसे कि कोई एक रेलवे की पटरी पे दौड़ती है, वैसे ही ये जो सूरज है वो सूरज मानसोत्तर पर्वत है उसके ऊपर वो घूमता है, सूरज जो मानसोत्तर पर्वत की इर्द गिर्द घूमता है, और चंद्रमा भी घूमता है। तो सूरज जो घूमता है, तो श्रीमद् भागवतम में 3 विस्तृत अध्याय है कि केवल सूरज के ऊपर, तो सूरज बहुत ही स्पीड से घूमता है, बहुत ही वेग के साथ घूमता है, और सूरज के 3 मोमेंट्स हैं, एक तो सुमेरु के इर्द गिर्द घूमता है, और उसमें भी ऊपर नीचे घूमता है, जब वो ऊपर जाता है तो उत्तरायण होता है, और नीचे जब जाता है तब वो दक्षिणायन रहता है, तो उत्तरायण और दक्षिणायन ऐसे सूरज के ये मोमेंट है, और उसके होते होते भी आगे पीछे भी जाता है, ऊपर नीचे तो घूमता ही है और आगे पीछे भी जाता है, और इस तरह से ऊपर नीचे भी आगे पीछे भी और ऐसे भी, इस तरह से सूरज की 3 रोटेशंस है, 3 मोमेंट्स है। और जैसे ही हम देखते कि मई महीने में इस रोटेशन में, इस संक्रमण में सूरज धरती के सबसे नजदीक रहता है, तो मतलब सिर पे भी रहता है और सबसे नजदीक भी रहता है, और जब घूमते घूमते नीचे जाता है और तब दूर दूर भी जाता है। इसके लिए हमें दिसंबर में या नवंबर में बहुत ठंडी महसूस होती है, क्योंकि सूरज बहुत दूर जाता है धरती से। फिर चंद्रमा का भी प्रदक्षिणा है, तो चंद्रमा का जो प्रदक्षिणा है वो सूरज से बहुत कम तेज है, सूरज से वो बहुत पीछे पीछे चलते रहता है चंद्रमा। इसके लिए हम देखते हैं कि आज सूरज 6 बजे उगेगा तो कल 6:01 बजे, कल 6:02 बजे, किंतु चंद्रमा का वैसा नहीं है। चंद्रमा का कैसा है, आज 7:30 बजे उगेगा शाम को, कल 9 बजे, परसों 10:30 बजे। तो एक बार ऐसा हुआ, अपना जो वाड़ा फार्म है तो उसमें बहुत सारे पाश्चात्य लोगों के योगी लोग आ गए, जो पाश्चात्य देश में योग के बहुत सारे जो अभ्यास होता है, तो सारे योगी लोग आ गए पाश्चात्य देश में, योगा अभ्यास करते अष्टांग योगा का, तो लगभग 30-40 लोग आ गए। तो हमारे गुरु महाराज बोले कि हम आपका स्वागत करते हैं और आज हम चंद्रोदय तक कीर्तन करेंगे, और हमारा जो वाड़ा फार्म है बहुत जंगल में है और पर्वतों के बीचों बीच है। तो योगी लोग बोले ठीक है चंद्रोदय तक करेंगे। तो उन्होंने पूछा कल कितने बजे चंद्र उगा था, बोले 7:30 बजे। पर उनको ये पता नहीं था कि चंद्र आज 7:30 बजे उगेगा, कल 9:30 बजे उगेगा। तो तब 6 बजे थे, तो महाराज बोले ठीक है हम चंद्रोदय तक करेंगे। तो चंद्रोदय उनको लगा कि कल 7:30 बजे हुआ, आज 7:35 को होगा, तो चंद्र आया ही नहीं, क्योंकि चंद्र की क्या गति है, आज 7 बजे, 1.5-1.5 घंटा वो पीछे जाता है। तो इसके लिए 9-9:30 बजे तक चंद्र आया ही नहीं, कीर्तन चलता रहा कीर्तन चलता रहा। और वो भी उसके ऊपर, उसके बाद पर्वत भी है और भी चंद्र फिर देरी से आएगा। तो हमारे महाराज जी को ये पता था, क्योंकि उनको अष्टांग योगी को भक्ति योग में लाना था, तो इसके लिए उन्होंने इस तरह से उनको ट्रांसेंडेंटली उनको चिट किया, मतलब क्योंकि उनकी भलाई के लिए। तो इसके लिए कीर्तन 3 घंटा चलता रहा, तभी भी सूर्य चंद्र नहीं होगा। फिर थोड़ी देर के बाद 10-10:30 बजे कहीं से चंद्र आया, फिर कीर्तन रुका। तो इसके लिए महाराज जी ने उनसे 3 घंटा कीर्तन करवाया अष्टांग योगी से। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सूरज और चंद्र जो सुमेरु के इर्द गिर्द घूमते हैं, और उसके ऊपर आप देखेंगे नक्षत्र, 28 नक्षत्र है। ये 28 नक्षत्र क्या है, ये चंद्र की 28 पत्नियां हैं, और इस पूरे विश्व में वो सबसे तेजी से घूमने वाले यस्यामृत संभृति काल चक्र, तो ये वो काल चक्र है, सबसे तेजी से घूमने वाले नक्षत्र रहते हैं एक विश्व में। और इसकी वजह से चंद्र जो है वो रोज एक एक नक्षत्र के साथ रहता है, एक एक नक्षत्र चंद्र की एक एक पत्नी है, और 2.5 नक्षत्र एक राशि फॉर्म करते हैं, मतलब 28 नक्षत्र से 12 राशि बनती है। और एक विश्व में बहुत स्पीड से, ये सबसे स्पीड से ये चक्र घूमता है। तो इसके लिए बाकी सारे जो ग्रह है उन ग्रहों का स्पीड इन नक्षत्रों के स्पीड के अनुरूप लिया जाता है। जैसे कि मानो कोई एक कक्षा है, वो कक्षा में कि रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट में से सबसे टॉपर कौन है उसके हिसाब से सबका रिजल्ट देखा जाता है, कि इसको 90 मिले, इसको 35 ही मिले, इसको 60 ही मिले। तो उस तरह से विश्व का सबसे ज्यादा स्पीड रहता है नक्षत्रों का, और नक्षत्र से भी नक्षत्र के अनुरूप सबका स्पीड लिया जाता है। तो ये नक्षत्र का स्पीड 360 डिग्री माना जाता है, 360 माना जाता है। तो इसके लिए सूर्य का स्पीड है 359, और उससे भी 13 डिग्री कम है चंद्र। इसके लिए चंद्र आज 7 बजे उगेगा, कल 9:30 बजे उगेगा। और इसके लिए चंद्र सूर्य का ऐसा स्थिति होता है, इसके लिए चंद्र की कला बदलती रहती है। जब पूर्णिमा रहती है तो सूरज और चंद्र आमने सामने रहते हैं, तो सूरज का पूर्ण प्रकाश चंद्र के ऊपर गिरता है, और इसकी वजह से हमें चंद्र का पूर्ण दर्शन होता है। तो इस तरह से और चंद्र अलग अलग नक्षत्रों में घूमता है, 28 नक्षत्र, इसलिए 28 तिथियां हैं। और हर साल में जब सूरज और चंद्र का जो प्रदक्षिणा पूरा होता है, तो हर साल में चंद्र 10 दिन पीछे जाता है। तो 3 साल में चंद्र मतलब कितना पीछे गया, 30 दिन। इसके लिए वो 30 दिन पूरा करना है, इसके लिए अधिक मास बोला जाता है, इसके लिए वो कवर अप करने के लिए हर 3 साल बाद अधिक मास होता है। तो इस तरह से जितना ये नक्षत्र का स्पीड है उतना ही स्पीड राहु का है, इसके लिए पर थोड़ा कम है। इसके लिए जो राहु है, राहु धीरे धीरे नक्षत्र को पीछा करता है, और इसके लिए एक राशि में राहु 2.5 साल रहता है। फिर जिस राहु में राशि 2.5 साल रहता है, उसके पहले 2.5 साल और उसके बाद के 2.5 साल उसको क्या रहता है, बहुत मशहूर एक शब्द है, 7.5 साथी। तो उसका ये कारण है कि जो राहु है वो आता है और उसके पहले के 2.5 साल, ये 2.5 साल और बाद के 2.5 साल, वो सब उसके लिए, वो राशि के लिए वो 7.5 साथी लग जाती है। तो इस तरह से चंद्र और सूरज का संक्रमण होता है और उसके ऊपर फिर स्वर्ग लोग है सब, गुरु शुक्र शनि, और उसके सबसे ऊपर है सप्तर्षि। तो सप्तर्षि भी है, वो भी बहुत वेग से घूमते हैं। इसके लिए आप रात को थोड़ा आकाश की तरफ देखोगे तो सप्तर्षि इस क्षितिज से आते हैं और धीरे धीरे उस क्षितिज में जाते हैं। आप रात को 9 बजे देखेंगे वो सप्तर्षि इधर रहेंगे, 11 बजे देखेंगे उधर रहेंगे, और फिर सुबह सुबह एकदम 4 बजे देखेंगे तो इस साइड को जाते हैं। तो इस तरह से, क्योंकि वो सूमेरु के इर्द गिर्द संक्रमण करते हैं, तो इसमें उसके ऊपर फिर ध्रुवलोक है। तो ध्रुवलोक इतना शक्तिशाली है कि ध्रुव से ये सारे जो ग्रह घूम रहे हैं वो ध्रुव तारक के ऊपर से उसका सब व्यवस्थापन होता है। तो ध्रुव जो है वो वैकुंठ जगत है, ध्रुव महाराज का वो लोग है। तो उधर से एक बहुत शक्तिशाली ऐसा एक पवन का जो वेग आता है और ये सारे तारों को सुमेरु के इर्द गिर्द घुमाता है। तो फिर ये जो है विश्व संपूर्ण होता है। तो आप इधर देखोगे ये जो विश्व के स्तर है, लेयर्स है, अर्थ फायर एयर वाटर ईथर, तो एक जो ब्रह्मांड है तो उसका बहुत बड़ा लेयर रहता है जो पृथ्वी का, उसके 10 गुना पानी का, उसके 10 गुना अग्नि का, उसके 10 गुना हवा का, उसके 10 गुना ईथर का। इस तरह से हम जो देख रहे थे एक विश्व ही हम देख पाते। रात को जब हम आसमान देखेंगे तो एक विश्व ही हमें नजर पड़ता है। तो पाश्चात्य जो दर्शन बोलते हैं कि एक विश्व में कई तारे रहते हैं, पर प्रभुपाद बोले नहीं, एक विश्व में सूरज प्रकाशित करता है, पूरे विश्व को सूरज प्रकाशित करता है, इतना सूरज का शक्ति रहता है। तो इसके लिए ये पूरा विश्व है। और इसमें जो बीचों बीच आप देख रहे हैं ये भूमंडल, भूमंडल में सप्तद्वीप है, और सप्तद्वीप में यहाँ पे आप देखेंगे ये जम्बूद्वीप। तो भूमंडल के 7 जो द्वीप है, मतलब ये कमल की 7 पंखुड़ियां हैं जो अलग अलग समुन्द्र से वो सेपरेट की जाती है, विभाजित की जाती है, और उसके बीचों बीच है जम्बूद्वीप जो जिसमें हम रह रहे हैं। जम्बूद्वीप में 9 वर्ष है, और 9 वर्ष भी उसका भी हम आगे देखेंगे। इसके बीचों बीच आप देख रहे हैं ये जम्बूद्वीप है जिसमें एक हमारी पृथ्वी है। और ये फिर ये जम्बूद्वीप का वर्णन है आज का जो अध्याय है कि जम्बूद्वीप के निवासियों द्वारा भगवान की स्तुति। तो ये जो जम्बूद्वीप में अलग अलग वर्ष है, तो क्या वर्ष है यहाँ पे हम दिखाई देगा, ये 9 वर्ष है, अलग अलग पर्वतों के द्वारा उनको विभाजित किया गया है। आज की जो चर्चा है जो प्रहलाद नरसिंह की प्रार्थना करे वो ये जो बीच वाला वर्ष है, इसका अभी वर्णन चल रहा है, जो इसका वर्णन चल रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अलग अलग वर्ष की अलग अलग एक अधिष्ठाता देवता रहती है उस तरह से, और उसके वर्ष के जो रहिवासी वो देवताओं को प्रार्थना अर्पण करते हैं। इस तरह से ये सब कॉस्मोलॉजी बनाने का सुखदेव गोस्वामी का बयान करने का एक ही इरादा है, क्योंकि उनको बोलना है भारतवर्ष क्या है। ये जो आप इधर भारतवर्ष देख रहे हैं, ये भारतवर्ष में भी 9 खंड है, तो उसमें से एक खंड है हमारा पृथ्वी। तो इस तरह से पृथ्वी में भी ये जो भारतवर्ष है इसमें ही केवल कलयुग रहता है, सत्ययुग कलयुग द्वापर युग, बाकी पूरे विश्व में कलयुग नहीं रहता। और कलयुग की विशेषता क्या है, सारे देवी देवता लालयित रहते कलयुग में जन्म लेने के लिए। कलयुग की एक ही विशेषता है, सब दोषों से भरा हुआ है, पर एक ही विशेषता है, हरेर नाम है केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते गतिरन्ना, केवल ये एक गुण के लिए इतना सारा वर्णन है। ये एक गुण का फायदा लेने के लिए देवी देवता लालयित रहते इस भारतवर्ष में जन्म लेने के लिए। तो इसके लिए भारतवर्ष के अधिष्ठाता देव है नर नारायण ऋषि, जिनका मूड है तपस्या। तो इसके लिए भारतवर्ष का मूड है तपस्या, तो इसके लिए भारतवर्ष में तपस्या करनी चाहिए। इसके लिए ये भारतवर्ष का सराहना बड़े बड़े देवी देवता करते हैं। तो सारे देवी देवता ये सराहना बोल के हम विराम देंगे। तो सारे देवी देवता बोलते हैं कि हमने क्या क्या नहीं किया इस स्वर्ग में आने के लिए, अलग अलग तप किए, दान धर्म किया, परंतु क्या है ये स्वर्ग लोग, यहाँ पे भगवान की आराधना होती ही नहीं है। तो किंतु ये भारत के रहवासी कितने भाग्यशाली हैं, ऐसा कौन बोल रहे हैं? स्वर्ग के लोग। जैसा कोई अमेरिका जाता है वहां पे जाके फ्रस्ट्रेट होता है, बोलता है क्या है ये अमेरिका, कोई भक्त यदि होगा तो बोलता है ये अमेरिका में भगवान का स्मरण ही नहीं होता, बेटर भारत ही अच्छा है। उसी तरह से सारे स्वर्गवासी क्या बोलेंगे कि भारत ही अच्छा है। फिर वो बोलते हैं कि किम दुष्कर न क्रतुभिस् तपवृतर दानादि विवा युज्जेन फलगुना नयत्र नारायण पदपा पंकजम स्मृति प्रमुष्टात अतिशय इंद्रियोत्सवात। यहाँ पे इतना इंद्रियों का उत्सव है कि भगवान की स्तुति वो उत्सव में एक हवा के माफिक बह दी जाती है, यहाँ पे भगवान की स्मृति नहीं होती है। तो इस तरह से वो पछताते स्वर्ग के लोग। फिर वो बोलते हैं कि कल्पायुषाम स्थाना जयात पुनर्भवात क्षणायुषम भारत भुजयो वरम। भारत वर्ष का एक क्षण ये स्वर्ग के एक कल्प के आयु के हिसाब से कई गुना अच्छा है। मतलब आप स्वर्ग लोक में एक कल्प रहे, मतलब ब्रह्मा जी का एक कल्प हजार युग, वो कुछ भी नहीं है भारत वर्ष के जन्म के एक क्षण के सामने। मतलब हम देख सकते हैं कि इंसान का जन्म जो है उसके एक एक क्षण का हिसाब किताब होता है। तो इसके लिए फिर वो बोलते हैं कि यहाँ पे भगवान, सब भगवान की आराधना कर सकते हैं, और भगवान की कई अनेक भावों में लोग आराधना करते, कोई इंद्रिय तृप्ति के लिए करते तो, पर भगवान भी बहुत होशियार रहते। ये भारत वर्ष में जो कोई इंद्रिय तृप्ति के लिए भगवान की यदि आराधना करते तो भगवान बोलते कि मैं उनकी इच्छा कामना पूरी करता हूं, पर इस तरह से करता हूं कि अगली बार वो कभी इच्छा नहीं रखेंगे इंद्रिय तृप्ति की। तो फिर भगवान बोलते हैं फिर ऐसे यदि लोग मेरे पास आते हैं मेरी आराधना करते हैं तो मैं इनकी इंद्रिय तृप्ति पूरी तो करता हूं पर मैं मेरे चरणों की रज भी उनको देता हूं। तो यहां पे बोले कि यदत्र न स्वर्ग सुखान्वेषितम शिष्टस्य सुक्तस्य कृतस्य शोभनम तेजना में स्मृति मत जन्म भी स्यात वर्षे हरियद भजता स्मतनोति। तो सारे देवता बोलते कि यदि हमारे जिंदगी में कुछ पुण्य यदि बचा है तो हमारी यदि एक ही इच्छा है हमें अगला जन्म भारत वर्ष में मिले, इस तरह से देवी देवता प्रार्थना करते। और इस ऐसे वर्ष के लोगों में भगवान कैसे आदान प्रदान करते? सत्यम दिशति अर्थितम अर्थितो नृणाम नैवार्थतो यद पुनरार्थितया स्वयं विदते भजताम अनिच्छितम इच्छा पिदानम निज पाद पल्लवम। इस तरह से भगवान बोलते हैं कि ऐसे भारतवासियों यदि कोई इंद्र तृप्ति से भी मेरी आराधना करता है किंतु मैं क्या करता हूं, मैं उनको मेरी इच्छा से मेरे स्वयं के चरणों का मैं अमृत उनको प्रदान करता हूं। इस तरह से इस भारत वर्ष का गुणगान करने के लिए और हरि नाम का महत्व स्थापित करने के लिए शुकदेव गोस्वामी में ने ये वर्णन किया है। और इस तरह से ये वर्णन तभी पूरा होगा जब गंगा का वर्णन किया जाए। जो गंगा जो है, फिर शुकदेव गोस्वामी बोलते कि गंगा कैसे अवतरित होती है, तो गंगा को विष्णुपदी बोला जाता है क्योंकि विष्णु के पद से जो इस ब्रह्मांड को जो छेद हुआ था उधर से गंगा आती है। फिर गंगा जो गर्भोदक सागर से वो विश्व के अंदर आती है, फिर ध्रुवलोक में जाती है, ध्रुवलोक के बाद सप्तर्षि लोगों पे आती है और सारे सप्तर्षि लोगों को प्रसन्न करके वो चंद्रमा के ऊपर आती है और स्वर्ग लोगों के बाद फिर चंद्रमा के ऊपर आती है, फिर सुमेरु के ऊपर आके फिर नीचे आती है और हिमालय के ऊपर गिरती है और हिमालय के बाद हरिद्वार में आके सारे भारत वर्ष को शुद्ध करके फिर वो सागर में मिलती है। इस तरह से ये गंगा का वर्णन है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारा छोटा सा वैदिक कॉस्मोलॉजी का स्टडी है, तो इसमें कुछ त्रुटियां है तो क्षमा करना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की जय।